हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रवनीत सबसे ज्यादा बोल रहा था। वंश के लिए ये माहौल बहुत ज्यादा नया था। उन सभी को देखकर वो खुश हो रहा था। आगे लड़के गुरदीप के साथ खड़े हुए लड़कियों के साथ बहस कर रहे थे। गीत, पम्मी, नवदीप सभी लड़कियां पीछे खड़ी हुई थीं। लगता है हमें ही जाकर गुरदीप की हेल्प करनी चाहिए, पम्मी ने कहा। पम्मी जो पीछे खड़ी हुई थी उसकी निगाह वंश पर गई, जो आगे खड़ा हुआ पीछे की तरफ मुड़कर देख लेता। वो बार बार गीत को देख रहा था। गीत, तुम्हें आगे जाना चाहिए, पम्मी ने धीरे से उसे कहा। हम सभी चलते हैं, मैं अकेली क्या करूंगी, गीत ने कहा। हम सभी क्या करेंगे, वंश, जीजू तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, उसने गीत को छेड़ा। गीत ने उसकी तरफ आंखें निकालकर देखा। जहां तो चुप हो जाओ, दोनों बहनें धीरे धीरे हंस रही थीं। मैंडी, जो खुद सभी लड़कियों के बीच खड़ी थी, उसकी निगाह भी वंश पर गई थी। जहां का तो नहीं लगता, कौन है ये, और वो बार बार मेरी तरफ ही देख रहा है। मैंडी को लगा कि वंश उसे देख रहा है, जबकि उसके पास गीत खड़ी थी। वंश उसके साथ खड़ी गीत को देख रहा था। माम, ये कौन है, मैंडी ने अपने साथ खड़ी माँ से पूछा। उसे लगा कोई ऐसा रिश्तेदार होगा जिसे वो नहीं जानती होगी। किसके बारे में पूछ रही हो, उसकी मॉम ने कहा। वही जो ब्लैक सूट में वो बहुत हैंडसम लड़का खड़ा है, कोई रवनीत का दोस्त हो सकता है। उसी के दोस्त आते हैं अक्सर सभी की शादियों में। मुझे ऐसा लगता है मैंने इसे कहीं देखा है, उसने अपनी माँ से कहा। तभी उसने पास ही खड़ी हुई नवदीप से पूछा, क्योंकि उसकी नज़र में वो रवनीत का कोई दोस्त था और नवदीप को उसका नाम पता ही होगा। जो ब्लैक सूट में है वो कौन है, तुम्हें उसका नाम पता है, नवदीप ने इधर उधर देखा। तेग वंश राणा, नवदीप ने मुस्कुरा कर कहा और वो वापस अपनी बातों में लग गई। उसने इंस्टाग्राम पर उसका नाम सर्च करने लगी। इंस्टाग्राम पर वंश का अकाउंट निकल आया था। ये तो बाइक रेसर तेग वंश है, क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो, उसकी मॉम ने पूछा। सामने ब्लैक सूट में लड़का खड़ा है, वो बाइक रेसर तेग वंश राणा है। उसकी माँ को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आया था, मगर फिर भी मैंडी बता रही, मैं भी कहूँ, मैंने इसे कहाँ देखा है, मैंने मैगजीन में देखा था इसे। वो वंश से मिलने के लिए आगे जाने लगी। तब तक लड़कियों जो वो मांग रही थीं, वो पैसे और गोल्ड की रिंग उन्हें मिल चुकी थी और उन्होंने बारात को अंदर जाने दिया। वंश, रवनीत और जस के साथ आगे बढ़ गया। मैंडी को भी कोई फ्रेंड मिल गई और वो भी वहीं रुक गई। शादी का प्रोग्राम बाहर लॉन में था और खाने पीने का सामान अंदर हॉल में लगा हुआ था। सभी अंदर की तरफ चले गए। वंश, रवनीत और उसके दोस्तों के साथ बिजी हो गया। गीत को अपनी सहेलियां मिल चुकी थीं, वो उनके साथ बिजी हो गई। अंदर से वो स्नैक्स और कॉफी वगैरह पीने के बाद सभी बाहर आकर बैठने लगे। वंश को बैठा देखकर मैंडी भी वहीं आ गई। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंडी ने वंश पास आकर कहा। वंश ने आसपास देखा। मैं आप ही से बात कर रही हूँ, मैंडी ने कहा। रवनीत ने मैंडी की तरफ देखा, वो हैरान था उसकी बात पर। वैसे आप कब से सेलिब्रिटी बन गए, और जो आपके फैन हैं, रवनीत ने मजाक किया, कहीं आपकी कोई पंजाबी एल्बम तो नहीं आई, हमारे यहाँ इतने पंजाबी सिंगर हैं, हर घर में एक सिंगर मिल जाएगा, रवनीत अभी भी मजाक के मूड में था। मैंडी उस पर गुस्सा होने लगी, ये इतने बड़े रेसर रहे हैं, वैसे तुम्हें रेसिंग का क्या पता, तुम तो गवार हो, गवार ही रहोगे, मैंडी ने रवनीत से कहा। अब मैंने रेसिंग छोड़ दी है, डैड को पसंद नहीं था, इसीलिए अब मैं रेसिंग नहीं करता। सचमुच आप एक बाइक रेसर हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, रवनीत ने हैरान होकर कहा। मैंडी भी वहां चेयर लेकर उनके पास बैठ चुकी थी। रेसिंग की बात सुनकर सभी को इंटरेस्ट हुआ। अब वंश के पास काफी लड़के और लड़कियां बैठ चुके थे। क्या कहा, आप बाइक रेसिंग करते हैं, जस ने कहा। अचानक फीलिंग आने लगी, उसके बास का बेटा भी तो रेसिंग करता है, उसकी सिक्स सेंस कह रही थी, हो ना हो ये उसके बास का बेटा है। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब रेसिंग में हिस्सा लेता था, मगर यूनिवर्सिटी के साथ रेसिंग भी छूट गई, अब डैड को पसंद नहीं, इसीलिए अब नहीं करता। वैसे आपको रेसिंग करनी चाहिए, मैंडी जो अपनी चेयर बिल्कुल वंश के नज़दीक कर चुकी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, वंश ने उसकी बात पर कहा। आपका पूरा नाम क्या है, जस ने कहा। आपको नहीं पता, वंश के बोलने से पहले मैंडी ने कहा, तेग वंश राणा फेमस रेसर है। अब जस को स्ट्रेस हो गया था। तो क्या रात आप ही की वजह से मुझे आपकी आज की छुट्टी मिली, उसके बात पर वंश मुस्कुराया। किसी बात का स्ट्रेस मत लो, अचानक मैंडी की मॉम भी उसे ढूंढती हुई आ गई थी। मैंडी, आ जाओ, तुम जहाँ क्या कर रही हो? मॉम, आती हूँ मैं। मैंने आपसे कहा था ना, ये बहुत फेमस रेसर हैं। मैंडी अपनी मॉम को वंश के बारे में बताने लगी। तभी गीत की नज़र दूर से वंश पर जाती है, जो लड़की और लड़कियों से घिरा हुआ बैठा था। मैंडी को वंश के पास बैठना गीत को बहुत गुस्सा दिला गया। मेहरा हाउस, दोपहर का समय। वेदिका की आंखों में चमक के साथ चिंता भी झलकने लगी। उसने हल्के से वेद का नाम अपने मन में दोहराया। ये दोनों लड़कियां उसकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती होंगी। बहुत नसीब वाला है तुम्हारा बेटा, पंडित जी ने वेदिका की ओर देखकर कहा। फिक्र मत किया करो बड़ी बहू, उन्होंने आगे कहा, वो तो इस घर की भी किस्मत बनकर आया है। उसके आने के बाद से इस घर का भाग्य ही बदल गया है और तुम्हारा भी। वेदिका की आंखों में यादों का झरोखा खुलता है। ये बात तो सच है पंडित जी, वेदिका ने धीमी आवाज में कहा। मेरा नसीब तो उसी दिन से चमका था जब वेद मेरी कोख में आया था। बलवंत मेहरा, जो एक समय गुस्से का पुतला हुआ करता था, जिनकी जिंदगी में रिश्तों का कोई मोल नहीं था, वो वेद के आने के बाद बदल गए थे। पहले क्या थे ये पूरे परिवार ने देखा है। उनकी जिंदगी में कई औरतें थीं। वेदिका से उनका विवाह एक समझौता था, एक मजबूरी थी, मगर जब वेद आने वाला था तभी बलवंत का चेहरा बदलने लगा था। आज जो वेदिका को देखकर मुस्कुराता है, हाथ थामता है, वो कभी ऐसा नहीं था। वर्तमान में वापसी, तो क्या वो दो शादियां करेगा? मौली और रूपा, जो थोड़ी देर पहले ही दोबारा हॉल में आई थीं, अचानक पूछ बैठीं, मगर दो लड़कियों के साथ कैसे रहेगा? रूपा ने बात बढ़ाई। मैंने कब कहा कि वो दो शादियां करेगा? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। आपने कहा दो लड़कियां उसकी जिंदगी में महत्वपूर्ण होंगी। हाँ, पंडित जी बोले, जब उसके जीवन पर खतरा आएगा तो ये दो लड़कियां ही होंगी जो उसे बचाएंगी। अब पंडित जी और कुछ नहीं कहना चाहते थे। उनकी आंखों में एक चुप्पी थी जो कुछ छिपा रही थी। बड़ी बहुरानी, उसका फिक्र करो, लेकिन इतना भी नहीं कि खुद बीमार हो जाओ, पंडित जी ने वेदिका को देखकर कहा। अब मैं चलता हूँ, वो उठे और वहाँ से चले गए। हॉल में खामोशी। अब ये दो लड़कियों वाली क्या बात थी? रूपा फिर बोली, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी बीवी और गर्लफ्रेंड हो, आजकल तो ऐसा भी चलन है। मौली ने उसका साथ दिया। वेदिका ने दोनों की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वो जानती थी इन बातों का जवाब देने से सिर्फ उसकी बेचैनी बढ़ेगी। देखो दीदी, हम आपका दिल दुखाने के लिए नहीं कह रहे, बस पंडित जी की बात कर रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, वेदिका ने बात खत्म की। मॉल, शाम का समय। तीनों जेठानी देवरानी मॉल से जल्दी लौट आई थीं क्योंकि पंडित जी आने वाले थे। अपनी ड्रेस तो वे ट्राई कर चुकी थीं, मगर चारों लड़के अब भी वहीं थे। बस और कितना टाइम लगेगा भाई, वेद बोर होकर बोला। उसने तो अपनी ड्रेस के लिए कपड़ा सिर्फ 10 मिनट में सेलेक्ट कर लिया था। बस 10 मिनट और, दीपक ने कहा। वेद बुटीक के गेट पर आ गया था तभी उसकी नज़र एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। उसके हाथ में आइसक्रीम थी और वो मॉल की लॉबी में इधर उधर घूम रही थी। वेद मुस्कुराया और उसके पास गया। हेलो ब्यूटीफुल, क्या कर रही हो?
लड़की ने उसकी ओर देखा, फिर चेहरा घुमा लिया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वेद उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। मॉम ने कहा है अजनबियों से बात नहीं करनी, बच्ची ने गंभीरता से कहा। तो हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं, फिर मैं अजनबी नहीं रहूंगा, वेद ने मुस्कुराते हुए कहा। फ्रेंडशिप आपके साथ? बच्ची ने आंखें बड़ी की और फिर सोचना शुरू कर दिया। पहले आइसक्रीम खा लूं, फिर बताती हूँ, अभी दिमाग बहुत गर्म है। क्या? वेद हंसते हुए बोला, आपका दिमाग गर्म कैसे हो गया? मत पूछो, जब मामी शॉपिंग करती हैं तो दिमाग गर्म हो ही जाता है। कब से अंदर गई हैं? तो उन्होंने आइसक्रीम देकर बहला दिया, वेद ने मुस्कुरा कर कहा। ऐसा ही समझ लीजिए, अब आइसक्रीम भी खत्म हो गई तो दोस्ती, हाथ कहाँ साफ करूँ? बच्ची ने अचानक पूछा। ये भी मेरी टेंशन है, वेद ने हंस कर कहा। आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हो इसलिए पूछ लिया, वरना तो चुपचाप मामी के दुपट्टे से साफ कर लेती। वह दुकान के अंदर चली गई और वेद मुस्कुराता रह गया। कुछ देर बाद सुधीर और सुधांशु भी बुटीक से बाहर आ चुके थे। क्या बात है भाई, बड़े खुश लग रहे हो, सुधीर ने कहा। अंदर तो बड़े मूड में थे, अब क्या मिल गया? एक छोटी बच्ची थी, उसका दिमाग गर्म था इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। वे लिफ्ट की ओर बढ़े। लिफ्ट कांच की थी जिससे पूरा मॉल नजर आ रहा था। तभी वेद की नज़र एक लड़की पर पड़ी। मानवी। मानवी, वेद के मुँह से अचानक निकला। क्या हुआ भाई? दीपक ने पूछा। कोई गर्लफ्रेंड मिल गई क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। वेद तुरंत लिफ्ट से बाहर निकला, मगर तब तक मानवी वहां से जा चुकी थी। वेद ने पूरे मॉल में नजरें दौड़ाईं, मगर वह कहीं नहीं दिखी। फोन कर लो, सुधीर ने सलाह दी। उसका नंबर नहीं है मेरे पास, वेद ने मायूसी से कहा। चलो चलते हैं, दीपक बोला। क्यों, ढूंढना नहीं है उसे? सुधांशु ने पूछा। आप आराम से ढूंढो भाई, हमें कोई जल्दी नहीं, दीपक हंसते हुए बोला। कहीं दिखाई नहीं दे रही, वेद की आवाज धीमी हो गई। मैंने सभी जगह देख लिया। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, वेद ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। चारों भाई फूड कोर्ट की तरफ बढ़ गए, मेहरा हाउस। डिनर से पहले वे सभी घर लौट आए थे। रूपा उन्हें देखकर बोली, क्या बात है, लगता है आज चारों भाइयों ने खूब शॉपिंग की है। पीछे से एक आदमी उनका ढेर सारा सामान उठा रहा था। बलवंत, जो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, ने पूछा, वेदांत कहाँ है? वेद ने बिना हिचक जवाब दिया, वो तो हमारे साथ था ही नहीं। सभी लोग ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। तभी वेदिका, रूप और मौली भी वहां आ गईं। वेदिका के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। रूपा बोली, मुझे एक बात बतानी थी, आज पंडित जी आए थे। बलवंत बोले, हाँ, वो कुछ शादी के सामान की लिस्ट देने वाले थे। रूपा मुस्कुरा कर बोली, आज उन्होंने वेद के बारे में कुछ कहा। बलवंत चौंके, क्या कहा? रूपा ने धीरे से कहा, उन्होंने कहा कि वेद की जिंदगी में दो लड़कियां होंगी जो उसे हर खतरे से बचाएंगी। रूप ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो अब तू दो शादियां करने वाला है वेद, एक बीवी एक गर्लफ्रेंड? वेद हंसते हुए बोला, अरे कौन सी दो लड़कियां मेरी लाइफ में आ रही हैं? उसने अपनी मॉम की ओर देखा जो गंभीर थीं। बलवंत ने बात काटते हुए कहा, इन बातों में मत पड़ो, हमें जयपुर की तैयारी करनी है। मगर रूपा ने जिद की, नहीं, पंडित जी ने कहा है कि वेद पर बड़ा खतरा है और दो लड़कियां उसकी रक्षा करेंगी। वेदिका, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली, उन्होंने ये भी कहा कि वेद इस घर की किस्मत है। वेद मुस्कुरा कर बोला, तो फिर बात साफ है, एक लड़की होगी जिससे मैं शादी करूंगा और दूसरी मेरी मॉम, जो अपनी दुआओं से मुझे हर बुराई से बचाती हैं। वेद ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। उसकी बात पर वेदिका की आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। दीपक ने माहौल हल्का करते हुए कहा, आजकल दो बीवियां कौन रखता है क्या? ये 1960 नहीं है। सब हंसने लगे। सुधीर और सुधांशु ने भी चुटकियां लीं। माहौल कुछ हल्का हो गया था, लेकिन वेदिका अब भी सोचों में डूबी थी। डिनर के बाद वेद अपने मॉम डैड के कमरे में गया। वेदिका ने दरवाजा खोले बिना कहा, खुला है, आ जाओ वेद। वेद मुस्कुराते हुए अंदर गया। बलवंत बोले, आज अच्छा लगा तुम्हें भाइयों के साथ देखकर, हमेशा अपनों के साथ रहो बेटा। वेद धीरे से माँ के पास बैठ गया। मॉम, आप क्यों परेशान हैं, मुझे सब बता दो। वेदिका ने गंभीर होकर कहा, पंडित जी ने कहा है कि तुम्हारी शादी 5 साल पहले ही हो चुकी है। वेद चौंका, क्या, क्या? वेदिका ने सिर हिलाया, बहुत बड़ा खतरा है तुम पर दो लड़कियां होंगी जो तुम्हें बचाएंगी। वेद सोच में पड़ गया। शॉर्टकट फ्लैशबैक, वेद और मानवी की पहली झलक। वो दिन कुछ अलग ही था। वेद ने बस स्टैंड के पास मानवी को देखा था। साधारण सी लड़की, मगर आंखों में एक गहराई थी, जैसे कुछ कहती हो मगर कह न पा रही हो। वेद का दोस्त बोला, वो देख, वही है मानवी जो अपने मामा मामी के साथ रहती है, बचपन में माँ बाप नहीं रहे उसके। वेद ने एक बार फिर उस लड़की को गौर से देखा और चुपचाप घर लौट आया। वो ऊपर अपने कमरे में चला गया। बेड पर लेटे लेटे उसकी आंखें बार बार खिड़की की ओर चली जाती थीं। तभी अचानक बगल वाले घर से किसी के जोर जोर से बोलने की आवाज आई, गुस्से और कड़वाहट से भरी आवाज। वेद तुरंत बालकनी में आया और झांक कर देखा। वो मानवी की मामी थी। वो मानवी पर चिल्ला रही थी और हाथ भी उठाया। तुझे एक काम ढंग से नहीं आता, सारे के सारे कांच के गिलास तोड़ दिए, कौन देगा इसके पैसे? तेरी मरी हुई माँ मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, ऊपर से अकड़ भी दिखाती है। वेद सन्न था। उसने देखा मानवी चुपचाप रो रही थी, लेकिन एक शब्द नहीं बोली। उसकी मामी गुस्से से पैर पटकती हुई अंदर चली गई। मानवी चुपचाप झुकी और कांच के टुकड़े समेटने लगी। उसी दौरान एक टुकड़ा उसके हाथ में चुभ गया। वो जल्दी से उठी और बाहर लगी पानी की टोंटी के नीचे हाथ धोने लगी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, मगर वो अब भी चुप थी। एक शब्द भी नहीं, कोई शिकवा नहीं। वेद की नजरें ठहर गईं। फ्लैशबैक खत्म। चलो चलते हैं, बातलों का सेहत के साथ क्या संबंध है? रीता, मानवी की सहेली, उत्साहित होकर बोली, क्या शॉपिंग की है आज, दिखाना कुछ? मानवी मुस्कुरा दी, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ टाइम अच्छा बीता। दोस्ती, पाठकों के लिए विशेष संदेश। अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट करें, रेटिंग दें और फॉलो करना ना भूलें। क्या वही लड़की है वेद की किस्मत? आपके शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। क्या आपको भी लगता है वेद की जिंदगी की दूसरी लड़की मानवी ही होगी? क्या वह उसकी रक्षा करेगी या कुछ और? कमेंट में बताएं। लेखिका की तरफ से खास अपील, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें, रेटिंग दें और मुझे फॉलो करना ना भूलें। आपका एक एक शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्या आप मानवी की कहानी से जुड़े? रक्षा, क्या वेद का दिल सही दिशा में जा रहा है? मेहरा हाउस, दोपहर का समय। वेदिका की आंखों में चमक के साथ चिंता भी झलकने लगी। उसने हल्के से वेद का नाम अपने मन में दोहराया। ये दोनों लड़कियां उसकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती होंगी। बहुत नसीब वाला है तुम्हारा बेटा, पंडित जी ने वेदिका की ओर देखकर कहा। फिक्र मत किया करो बड़ी बहू, उन्होंने आगे कहा, वह तो इस घर की भी किस्मत बनकर आया है। उसके आने के बाद से इस घर का भाग्य ही बदल गया है और तुम्हारा भी। वेदिका की आंखों में यादों का झरोखा खुलता है। ये बात तो सच है पंडित जी, वेदिका ने धीमी आवाज में कहा। मेरा नसीब तो उसी दिन से चमका था जब वेद मेरी कोख में आया था। बलवंत मेहरा, जो एक समय गुस्से का पुतला हुआ करता था, जिनकी जिंदगी में रिश्तों का कोई मोल नहीं था, वो वेद के आने के बाद बदल गए थे। पहले क्या थे ये पूरे परिवार ने देखा है। उनकी जिंदगी में कई औरतें थीं। वेदिका से उनका विवाह एक समझौता था, एक मजबूरी थी, मगर जब वेद आने वाला था तभी बलवंत का चेहरा बदलने लगा था। आज जो वेदिका को देखकर मुस्कुराता है, हाथ थामता है, वो कभी ऐसा नहीं था। यादों का झरोखा खुलता है। तो क्या वह दो शादियां करेगा? मौली और रूपा, जो थोड़ी देर पहले ही दोबारा हॉल में आई थीं, अचानक पूछ बैठीं, मगर दो लड़कियों के साथ कैसे रहेगा? रूपा ने बात बढ़ाई, मैंने कब कहा कि वह दो शादियां करेगा? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा।
आपने कहा दो लड़कियां उसकी जिंदगी में महत्वपूर्ण होंगी। हाँ, पंडित जी बोले, जब उसके जीवन पर खतरा आएगा तो ये दो लड़कियां ही होंगी जो उसे बचाएंगी। अब पंडित जी और कुछ नहीं कहना चाहते थे। उनकी आंखों में एक चुप्पी थी जो कुछ छिपा रही थी। बड़ी बहू रानी, उसका फिक्र करो, लेकिन इतना भी नहीं कि खुद बीमार हो जाओ, पंडित जी ने वेदिका को देखकर कहा। अब मैं चलता हूँ। वो उठे और वहां से चले गए। हॉल में खामोशी। अब ये दो लड़कियों वाली क्या बात थी? रूपा फिर बोली, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी बीवी और गर्लफ्रेंड हो। आजकल तो ऐसा भी चलन है, मौली ने उसका साथ दिया। वेदिका ने दोनों की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वो जानती थी इन बातों का जवाब देने से सिर्फ उसकी बेचैनी बढ़ेगी। देखो दीदी, हम आपका दिल दुखाने के लिए नहीं कह रहे, बस पंडित जी की बात कर रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, वेदिका ने बात खत्म की। मॉल, शाम का समय। तीनों जेठानी देवरानी मॉल से जल्दी लौट आई थीं क्योंकि पंडित जी आने वाले थे। अपनी ड्रेस तो वे ट्राई कर चुकी थीं, मगर चारों लड़के अब भी वहीं थे। और कितना टाइम लगेगा भाई? वेद बोर होकर बोला। उसने तो अपनी ड्रेस के लिए कपड़ा सिर्फ 10 मिनट में सिलेक्ट कर लिया था। बस 10 मिनट और, दीपक ने कहा। वेद बुटीक के गेट पर आ गया था, तभी उसकी नज़र एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। उसके हाथ में आइसक्रीम थी और वो मॉल की लॉबी में इधर उधर घूम रही थी। वेद मुस्कुराया और उसके पास गया। हेलो ब्यूटीफुल, क्या कर रही हो? लड़की ने उसकी ओर देखा, फिर चेहरा घुमा लिया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वेद उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। मॉम ने कहा है अजनबियों से बात नहीं करनी, बच्ची ने गंभीरता से कहा। तो हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं, फिर मैं अजनबी नहीं रहूँगा, वेद ने मुस्कुराते हुए कहा। फ्रेंडशिप आपके साथ? बच्ची ने आंखें बड़ी कीं और फिर सोचना शुरू कर दिया। पहले आइसक्रीम खा लूं, फिर बताती हूँ, अभी दिमाग बहुत गर्म है। क्या? वेद हंसते हुए बोला, आपका दिमाग गर्म कैसे हो गया? मत पूछो, जब मामी शॉपिंग करती हैं तो दिमाग गर्म हो ही जाता है, कब से अंदर गई हैं। तो उन्होंने आइसक्रीम देकर बहला दिया, वेद ने मुस्कुराकर कहा। ऐसा ही समझ लीजिए, अब आइसक्रीम भी खत्म हो गई तो दोस्ती, हाथ कहाँ साफ करूँ? बच्ची ने अचानक पूछा। ये भी मेरी टेंशन है, वेद हंसकर बोला। आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हो इसलिए पूछ लिया, वरना तो चुपचाप मामी के दुपट्टे से साफ कर लेती। वो दुकान के अंदर चली गई और वेद मुस्कुराता रह गया। कुछ देर बाद सुधीर और सुधांशु भी बुटीक से बाहर आ चुके थे। क्या बात है भाई, बड़े खुश लग रहे हो, सुधीर ने कहा। अंदर तो बड़े मूड में थे, अब क्या मिल गया? एक छोटी बच्ची थी, उसका दिमाग गरम था, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। वे लिफ्ट की ओर बढ़े। लिफ्ट कांच की थी जिससे पूरा मॉल नजर आ रहा था। तभी वेद की नज़र एक लड़की पर पड़ी। मानवी, मानवी, वेद के मुंह से अचानक निकला। क्या हुआ भाई, दीपक ने पूछा, कोई गर्लफ्रेंड मिल गई क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। वेद तुरंत लिफ्ट से बाहर निकला, मगर तब तक मानवी वहाँ से जा चुकी थी। वेद ने पूरे मॉल में नजरें दौड़ाई, मगर वो कहीं नहीं दिखी। फोन कर लो, सुधीर ने सलाह दी। उसका नंबर नहीं है मेरे पास, वेद ने मायूसी से कहा। चलो चलते हैं, दीपक बोला। क्यों, ढूंढना नहीं है उसे? सुधांशु ने पूछा। आप आराम से ढूंढो भाई, हमें कोई जल्दी नहीं, दीपक हंसते हुए बोला। कहीं दिखाई नहीं दे रही, वेद की आवाज धीमी हो गई। मैंने सभी जगह देख लिया। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, वेद ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। चारों भाई फूड कोर्ट की तरफ बढ़ गए, मेहरा हाउस। डिनर से पहले वे सभी घर लौट आए थे। रूपा उन्हें देखकर बोली, क्या बात है, लगता है आज चारों भाइयों ने खूब शॉपिंग की है। पीछे से एक आदमी उनका ढेर सारा सामान उठा रहा था। बलवंत, जो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, ने पूछा, वेदांत कहाँ है? वेद ने बिना हिचक जवाब दिया, वो तो हमारे साथ था ही नहीं। सभी लोग ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। तभी वेदिका, रूप और मौली भी वहाँ आ गईं। वेदिका के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। दादी रूपा बोली, मुझे एक बात बतानी थी, आज पंडित जी आए थे। बलवंत बोले, हाँ, वो कुछ शादी के सामान की लिस्ट देने वाले थे। रूपा मुस्कुराकर बोली, आज उन्होंने वेद के बारे में कुछ कहा। बलवंत चौंके, क्या कहा? रूपा ने धीरे से कहा, उन्होंने कहा कि वेद की जिंदगी में दो लड़कियां होंगी जो उसे हर खतरे से बचाएंगी। रूप ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो अब तो दो शादियां करने वाला है वेद, एक बीवी एक गर्लफ्रेंड। वेद हंसते हुए बोला, अरे कौन सी दो लड़कियां मेरी लाइफ में आ रही हैं? उसने अपनी मॉम की ओर देखा जो गंभीर थी। बलवंत ने बात काटते हुए कहा, इन बातों में मत पड़ो, हमें जयपुर की तैयारी करनी है। मगर रूपा ने जिद की, नहीं, पंडित जी ने कहा है कि वेद पर बड़ा खतरा है और दो लड़कियां उसकी रक्षा करेंगी। वेदिका, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली, उन्होंने ये भी कहा कि वेद इस घर की किस्मत है। वेद मुस्कुराकर बोला, तो फिर बात साफ है, एक लड़की होगी जिससे मैं शादी करूंगा और दूसरी मेरी मॉम, जो अपनी दुआओं से मुझे हर बुराई से बचाती हैं। वेद ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। उसकी बात पर वेदिका की आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। दीपक ने माहौल हल्का करते हुए कहा, आजकल दो बीवियां कोई रखता है क्या? ये 1960 नहीं है। सब हंसने लगे। सुधीर और सुधांशु ने भी चुटकियां लीं। माहौल कुछ हल्का हो गया था, लेकिन वेदिका अब भी सोचों में डूबी थी। डिनर के बाद वेद अपने मॉम डैड के कमरे में गया। वेदिका ने दरवाजा खोले बिना कहा, खुला है, आ जाओ वेद। वेद मुस्कुराते हुए अंदर गया। बलवंत बोले, आज अच्छा लगा तुम्हें भाइयों के साथ देखकर, हमेशा अपनों के साथ रहो बेटा। वेद धीरे से माँ के पास बैठ गया। मॉम, आप क्यों परेशान हैं, मुझे सब बता दो। वेदिका ने गंभीर होकर कहा, पंडित जी ने कहा है कि तुम्हारी शादी 5 साल पहले ही हो चुकी है। वेद चौंका, क्या? वेदिका ने सिर हिलाया, बहुत बड़ा खतरा है तुम पर दो लड़कियां होंगी जो तुम्हें बचाएंगी। वेद सोच में पड़ गया। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, वेद ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। चारों भाई फूड कोर्ट की तरफ बढ़ गए, मेहरा हाउस। डिनर से पहले वे सभी घर लौट आए थे। रूपा उन्हें देखकर बोली, क्या बात है, लगता है आज चारों भाइयों ने खूब शॉपिंग की है। पीछे से एक आदमी उनका ढेर सारा सामान उठा रहा था। बलवंत, जो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, ने पूछा, वेदांत कहाँ है? वेद ने बिना हिचक जवाब दिया, वो तो हमारे साथ था ही नहीं। सभी लोग ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। तभी वेदिका, रूप और मौली भी वहाँ आ गईं। वेदिका के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। दादी रूपा बोली, मुझे एक बात बतानी थी, आज पंडित जी आए थे। बलवंत बोले, हाँ, वो कुछ शादी के सामान की लिस्ट देने वाले थे। रूपा मुस्कुराकर बोली, आज उन्होंने वेद के बारे में कुछ कहा। बलवंत चौंके, क्या कहा? रूपा ने धीरे से कहा, उन्होंने कहा कि वेद की जिंदगी में दो लड़कियां होंगी जो उसे हर खतरे से बचाएंगी। रूप ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो अब तो दो शादियां करने वाला है वेद, एक बीवी एक गर्लफ्रेंड। वेद हंसते हुए बोला, अरे कौन सी दो लड़कियां मेरी लाइफ में आ रही हैं? उसने अपनी मॉम की ओर देखा जो गंभीर थी। बलवंत ने बात काटते हुए कहा, इन बातों में मत पड़ो, हमें जयपुर की तैयारी करनी है। मगर रूपा ने जिद की, नहीं, पंडित जी ने कहा है कि वेद पर बड़ा खतरा है और दो लड़कियां उसकी रक्षा करेंगी। वेदिका, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली, उन्होंने ये भी कहा कि वेद इस घर की किस्मत है। वेद मुस्कुराकर बोला, तो फिर बात साफ है, एक लड़की होगी जिससे मैं शादी करूंगा और दूसरी मेरी मॉम, जो अपनी दुआओं से मुझे हर बुराई से बचाती हैं। वेद ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। उसकी बात पर वेदिका की आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। दीपक ने माहौल हल्का करते हुए कहा, आजकल दो बीवियां कोई रखता है क्या? ये 1960 नहीं है। सब हंसने लगे। सुधीर और सुधांशु ने भी चुटकियां ली। माहौल कुछ हल्का हो गया था, लेकिन वेदिका अब भी सोचों में डूबी थी। डिनर के बाद वेद अपने मॉम डैड के कमरे में गया। वेदिका ने दरवाजा खोले बिना कहा, खुला है, आ जाओ वेद। वेद मुस्कुराते हुए अंदर गया। बलवंत बोले, आज अच्छा लगा तुम्हें भाइयों के साथ देखकर। हमेशा अपनों के साथ रहो बेटा। वेद धीरे से माँ के पास बैठ गया। मॉम, आप क्यों परेशान हैं? मुझे सब बता दो। वेदिका ने गंभीर होकर कहा, पंडित जी ने कहा है कि तुम्हारी शादी 5 साल पहले ही हो चुकी है। वेद चौंका, क्या? वेदिका ने सिर हिलाया। बहुत बड़ा खतरा है तुम पर दो लड़कियां होंगी जो तुम्हें बचाएंगी। वेद सोच में पड़ गया। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, वेद ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। चारों भाई फूड कोर्ट की तरफ बढ़ गए। मेहरा हाउस। डिनर से पहले वे सभी घर लौट आए थे। रूपा उन्हें देख कर बोली, क्या बात है, लगता है आज चारों भाइयों ने खूब शॉपिंग की है। पीछे से एक आदमी उनका ढेर सारा सामान उठा रहा था। बलवंत, जो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, ने पूछा, वेदांत कहाँ है? वेद ने बिना हिचक जवाब दिया, वो तो हमारे साथ था ही नहीं। सभी लोग ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। तभी वेदिका, रूप और मौली भी वहाँ आ गईं। वेदिका के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। दादी रूपा बोली, मुझे एक बात बतानी थी, आज पंडित जी आए थे। बलवंत बोले, हाँ, वो कुछ शादी के सामान की लिस्ट देने वाले थे। रूपा मुस्कुराकर बोली, आज उन्होंने वेद के बारे में कुछ कहा। बलवंत चौंके, क्या कहा? रूपा ने धीरे से कहा, उन्होंने कहा कि वेद की जिंदगी में दो लड़कियां होंगी जो उसे हर खतरे से बचाएंगी। रूप ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो अब तो दो शादियां करने वाला है वेद, एक बीवी एक गर्लफ्रेंड। वेद हंसते हुए बोला, अरे कौन सी दो लड़कियां मेरी लाइफ में आ रही हैं? उसने अपनी मॉम की ओर देखा, जो गंभीर थी। बलवंत ने बात काटते हुए कहा, इन बातों में मत पड़ो, हमें जयपुर की तैयारी करनी है। मगर रूपा ने जिद की, नहीं, पंडित जी ने कहा है कि वेद पर बड़ा खतरा है और दो लड़कियां उसकी रक्षा करेंगी। वेदिका, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली, उन्होंने ये भी कहा कि वेद इस घर की किस्मत है। वेद मुस्कुराकर बोला, तो फिर बात साफ है, एक लड़की होगी जिससे मैं शादी करूंगा और दूसरी मेरी मॉम, जो अपनी दुआओं से मुझे हर बुराई से बचाती हैं। वेद ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। उसकी बात पर वेदिका की आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। दीपक ने माहौल हल्का करते हुए कहा, आजकल दो बीवियां कोई रखता है क्या? ये 1960 नहीं है। सब हंसने लगे। सुधीर और सुधांशु ने भी चुटकियां ली। माहौल कुछ हल्का हो गया था, लेकिन वेदिका अब भी सोचों में डूबी थी। डिनर के बाद वेद अपने मॉम डैड के कमरे में गया। वेदिका ने दरवाजा खोले बिना कहा, खुला है, आ जाओ वेद। वेद मुस्कुराते हुए अंदर गया।
क्या आप मानवी की कहानी से जुड़े? क्या वेद का दिल सही दिशा में जा रहा है?